नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। ২০২৫ में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, AI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र दुआरे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से दो दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अरियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेस्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए एआई के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीफ अली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।